ओम शांति। आज सुबह से ही आप बहुत सारी आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में। अभी सुबह के पैनल डिस्कशन में भी आपने कुछ ऐसे अनुभव सुने। आपको ये बातें अच्छी भी लग रही होगी, कुछ बातों के लिए प्रश्न भी होंगे, नहीं? और धीरे धीरे ये 2-3 दिनों में ये सारे प्रश्न जरूर क्लियर होते जाएंगे और आगे के सेशंस में आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। कुछ बातें आप स्वयं भी चिंतन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और जितना जितना हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को समझते जाते हैं, अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा महत्व एप्लीकेशन पर दिया जाता है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, तो शक्ति उसी से मिलती है। तो ये शब्द जो स्वयं है, सेल्फ के बारे में है, हम सुबह से भी सुन रहे हैं और कई बार हम सारे दिन में मैं शब्द या स्वयं ये शब्द यूज करते हैं। और जरूर हमसे ज्यादा हमारे बारे में और कौन जान सकता है, है ना? तो आप सबसे अच्छी तरह अपना परिचय दे सकते हैं। कहाँ भी कोई स्थान पर हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो परिचय की लेन देन पहले होती है, ऐसा है ना? यहाँ भी आप कई लोगों से मिले होंगे तो बातचीत की होगी, बातचीत करते मिल रहे हैं तो एक दूसरे से नाम जो है, आपकी स्पेशलिटी, आप किस हॉस्पिटल से, किस स्थान से हैं, बातचीत हुई आपकी एक दूसरे के साथ? हुई? सर ऐसे कर सकते हैं, हिला सकते हैं, नहीं? तो हम देखते हैं कि जैसे हम परिचय का लेन देन करते हैं तो हम परिचय में पहले क्या बताते हैं? नाम बताते हैं। और क्या बताएंगे एज डॉक्टर्स? आप और क्या बताएंगे? आपकी स्पेशलिटी, आप किस स्थान से हैं, आपके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका इंटरेक्शन क्या हुआ है, आपका अपना रिसर्च जो आपने किया है, फिर परिवार के बारे में, उस वहाँ जिस स्थान से आए हैं वहाँ के और कोई स्पेशलिटी के बारे में। तो हम जब अपना परिचय दे रहे हैं तो नाम बता रहे हैं, कार्य जो है हमारी, जो जिम्मेवारियां वहाँ हैं जो हम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, हम अपने परिवार के बारे में बताते हैं। तो ये सारी जानकारी के आगे मेरा शब्द बार बार आता है, मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी, मेरी ये पोजीशन है, मेरी अचीवमेंट्स है, मेरा ये रिसर्च है, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये कार्य है, मेरा परिवार है, मेरा स्टेट, लैंग्वेज, मेरी बिलीफ सिस्टम, यही कहते हैं ना, तो मेरा शब्द यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न रह जाता है कि मैं कौन, प्रश्न रह जाता है ना, मैं कौन? मेरा नाम है, मेरा कार्य है, मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं कौन? ये प्रश्न अगर अपने आप से पूछते हैं तो अंतर से क्या जवाब आता है? What voice comes from within? What response comes from within? अब तक तो हमने हमेशा ये हमारा जो बाह्य व्यक्तित्व है उसी के बारे में समझा, सोचा और उसी का वर्णन किया। लेकिन अब तो हम समझ रहे हैं कि ये जो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है वो तो मेरा है। अचीवमेंट्स जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब कुछ भी मेरा है। मैं कौन? Who am I? जानना जरूरी है। क्या कहेंगे? हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, जानना जरूरी है। आगे वाले क्या समझते? जानना जरूरी, जानना है ना। तो क्या अंदर से क्या जवाब आता है? जो मेरा व्यक्तित्व जो आज हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जिन डिटेल्स के बारे में हम वर्णन करते हैं, वो सब के आगे मेरा शब्द आ रहा है, माय। बट हु एम आई? तो हम देखते हैं कि यहां हमें राजयोग के द्वारा परमात्मा इस 2 एस्पेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी देते हैं। एज अ डॉक्टर आप इसके बारे में और अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब आप ट्रीट भी कर रहे हैं तो आप हर एक पेशेंट के स्वास्थ्य को जो आप संभालते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, आगे के लिए कैसे स्वस्थ रह सके उसके लिए गाइड करते हैं। तो ये सारा फोकस वास्तव में फिजिकल हेल्थ पर रहता है। अभी हम धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं कि हर एक पेशेंट की इमोशनल मेंटल वेलबींग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अब डॉक्टर्स भी आप भी गाइड करते हैं उनको। तो ये एस्पेक्ट जो हमारा फिजिकल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने प्राप्त किया हुआ स्व या फिजिकल स्व या बाह्य स्व कहते हैं, एक्वायर्ड सेल्फ, जिसमें हमारा शरीर है, संबंध है, कारोबार है, जिम्मेवारियां है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, एवरीथिंग विच वी से इज माय, विच बिलोंग्स टू मी। और ये आंतरिक स्व अर्थात मैं, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स अलग हैं, इसकी स्पष्टता हम यहां सीखते हैं। जानते जरूर हैं, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर भी, आप कई बार ऐसे प्रसंग हैं, अनुभव हैं, जहां आपने डेथ को देखा है, तो उस समय आप कहते जरूर हैं कि अब ये जो भी नाम पेशेंट का है, उनकी ये बॉडी जो है उसको रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना होगा, कहते हैं ना। अब आप उनको नाम से नहीं बुलाते, आप कहते हैं सोएंसो की ये बॉडी जो है इसको रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर लो। तो वो जो व्यक्ति था वो हम समझते हैं कि अभी नहीं है। तो ये दो एस्पेक्ट्स जो आइडेंटिटी के हैं, एक हमारा एक्वायर्ड बाह्य और एक आंतरिक स्व, और इस आंतरिक स्व को हमने अलग अलग शब्दों में आध्यात्मिकता में इसका वर्णन किया है। आत्मा भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, मेटाफिजिकल सेल्फ कहते हैं, अलग प्रकार के लाइफ एनर्जी कहते हैं, अलग अलग शब्द। लेकिन आप और बेहतर जानते हैं कि ये दोनों एस्पेक्ट्स अलग हैं। तो हम जब अपने आप के बारे में सोचते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, जिसके आधार से सारा दिन हम अपने बारे में सोच रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। किस आइडेंटिटी को हमने महत्व दिया है? एक्वायर्ड सेल्फ। उसी अवेयरनेस में हम सारा दिन रहते हैं, ऐसा है ना? ऐसा है, पीछे वाले भी समझते हैं। ये नेचुरल हो गया, हम सब के लिए ये नेचुरल हो गया है। और ये आंतरिक स्व जो है, इसकी अवेयरनेस कब आती है, इसके बारे में कब याद करते हैं? इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं कि है, ऊर्जा है, लेकिन इसकी अवेयरनेस कब आती है? जहां ऐसे कभी मृत्यु का समय होता है और फिर हम जरूर कहते हैं कि अब इनकी आत्मा को शांति मिले, नहीं? हमें कभी कोई मैसेज आ जाता है, हमारे कोई परिचित व्यक्ति का देहांत हुआ है, मैसेज आ गया, तो क्या मैसेज जवाब में हम देते हैं? मैसेज करते आरआईपी लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, उस आत्मा को शांति मिले, तब हम इस आइडेंटिटी को याद करते हैं, है ना? और तब हम कहते हैं कि इनको शांति मिले। अब हम जानते हैं कि शरीर तो शांत हो चुका है और उसका हम बहुत सम्मान से क्रियाकर्म आदि करते हैं, लेकिन किसके लिए शांति के लिए हम मैसेज कर रहे हैं, शुभ भावनाएं दे रहे हैं? किसकी शांति के लिए? आत्मा की शांति के लिए। तो ऐसे कुछ मौके ही हैं जब हम शायद इस अवेयरनेस को हम जागृत करते हैं। और एज ए डॉक्टर आप जानते हैं कि इस समय ये दोनों व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली, आज बाह्य व्यक्तित्व है, लेकिन अगर हमें सदा स्वस्थ रहना है, क्योंकि आप उसी हेल्थ के एरिया में सबको गाइड करते हैं और आपका रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज डॉक्टर को भगवान के साथ जोड़ा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड, आप भगवान के फरिश्ते हैं, लोगों को सुख देने वाले, नहीं? समय पर, जब बीमारी के समय पर आप जो कहते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसे गाइड करते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति फॉलो करता है, क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट है आपके प्रति, तो इसलिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और आपको दुआएं भी सबकी है ना, सबकी दुआएं भी मिलती है, बहुत दुआएं मिलती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे समय पर आप स्वास्थ्य के लिए जब समझते हैं कि कोई पेशेंट हमेशा स्वस्थ रहे, हम भी खुद हमेशा स्वस्थ रहे, उसके लिए दोनों में से किस व्यक्तित्व को मालिक होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, जिसको जीवन के हर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, decision making power, leadership power, मालिक दोनों में से किसको होना चाहिए, बॉस किसको होना चाहिए, क्या कहेंगे? दोनों व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चलते हैं, लेकिन मालिक किसको होना चाहिए, किसको? पेशेंट को भी, उसमें दोनों व्यक्तित्व में से मालिक, या हमारे जीवन में भी ये दोनों व्यक्तित्व है, तो मालिक किसको होना चाहिए जी? बाह्य स्व को या आंतरिक स्व को? आंतरिक स्व को। अगर सदा स्वस्थ रहना है, जो होलिस्टिक हेल्थ के लिए आप गाइड करते हैं अभी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारे हेल्थ कंबाइंड रूप में एंजॉय करना है, तो किसको मालिक होना चाहिए, किसको मालिक होना चाहिए? इनर सेल्फ। पक्का? पक्का। इस समय मालिक कौन है, इस समय मालिक कौन है हमारे जीवन में, इस समय दोनों में से मालिक कौन है, कौन है? अभी तो जवाब नहीं दे रहे। हम तो हैं, लेकिन हम में से भी दोनों स्व में से मालिक कौन हो गया है अभी? बाह्य स्व। क्यों मालिक हो गया? हम तो जानते हैं कि इनर सेल्फ को मालिक होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। बाह्य स्व की भी, के स्वास्थ्य की प्रगति 100% तब होती है जब आंतरिक स्व सक्षम होता है। इसलिए आप भी अभी गाइड करते हैं कि मन को हील करना बहुत जरूरी है। साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं, बहुत ज्यादा इलनेसेस, तो ट्रिगर फैक्टर स्ट्रेस और कहीं ना कहीं पेन और सौरो ही है, तो ये तो आप गाइड करते हैं। लेकिन क्यों बाह्य स्व मालिक हो गया? क्योंकि हम देखें, अगर सुबह से रात तक अगर हम चेक करें, जो हमारा हमने समय इन्वेस्ट किया है उसमें बाह्य स्व की जिम्मेवारी, उसको सशक्त रखने की जिम्मेवारी, उसको ठीक से चलाने की जिम्मेवारी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेवारी में कितना समय हम इन्वेस्ट करते हैं, और आंतरिक स्व को सक्षम बनाने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए, उसके प्रति हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उसके लिए हम कितना समय, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट दिखाई देता है, क्या रिजल्ट दिखाई देता है, क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा समय हमने किसके लिए दिया, किसको महत्व दिया? बाह्य स्व को। और इसको अगर हम देखें, आज हम क्यों समझ रहे हैं, इसको हम इसलिए जान रहे हैं कि ये जो असंतुलन हो गया, जिसमें हम आंतरिक स्व की अवेयरनेस न रहने की वजह से उसको हम समय दे ही नहीं पाए, उसको हम एम्पावर करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, प्रायोरिटी नहीं दे पाए, उसका महत्व नहीं अनुभव कर पाए। इसकी रियलाइजेशन भी कहां कब हो रही है, जब इसका इम्पैक्ट बाह्य स्व पर पड़ रहा है ना? आज क्यों ज्यादा इसके प्रति जागृत हो गए, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्यों जागृत हो गए, क्यों जागृत हो गए? क्योंकि इसका इम्बैलेंस का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है, ऐसा आप समझते हैं? क्योंकि आप तो रोज ट्रीट करते हैं ना पेशेंट्स को, आप देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स जो है वो जल्दी हील हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स को थोड़ा समय लगता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे एक्वायर्ड सेल्फ पर, अर्थात हमारे स्वास्थ्य, संबंध और जिम्मेवारी पर पड़ रहा है ये असंतुलन की वजह से। इसलिए यहां हम राजयोग में फिर से इस आंतरिक स्व को जानते हैं, समझते हैं, और इसको सदा सशक्त रखने के लिए, इसके लिए परमात्मा हमें यहां विधि सिखाते हैं, और फिर इसको अपने दैनिक जीवन में इंटीग्रेट करने के लिए, डेली लाइफ में इसको इंटीग्रेट करने के लिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर लाइफस्टाइल सिखाते हैं, हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल, जो आप भी गाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो एक राजयोगी लाइफस्टाइल जिससे सुबह से रात तक ऑटोमेटिकली कारोबार के साथ साथ ये आंतरिक स्व भी सक्षम रहे, खुश रहे, और जितना खुश रहेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी चीजें, संबंध और स्वास्थ्य तो ठीक होता जाएगा। अब इस आंतरिक स्व के बारे में परमात्मा हमें बहुत स्पष्टता से और सहजता से हमें समझ देते हैं। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ये दो एस्पेक्ट्स को समझें, एक बाह्य स्व जिसको हमने शरीर के रूप में देखा, शरीर और उसको चलाने वाली ये आध्यात्मिक शक्ति आत्मा। तो जब हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो ह्यूमन माना ह्यूमस से आता है, नहीं वर्ड ह्यूमस यूज करते हैं जिसका अर्थ है मिट्टी, आप जानते हैं। तो इसलिए फिजिकल बॉडी जिसको आप सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है क्योंकि परमात्मा की ये बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट हम सबको मिली है, और इस परमात्मा की गिफ्ट को संभालने के लिए आप सब मददगार हैं। आप ईश्वर के फरिश्ते हैं जो हरेक को स्वस्थ रहने के लिए मदद करते हैं। तो ये बाह्य स्व, ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको हमने आत्मा कहा, शक्ति कहा, स्पिरिट कहा, परमात्मा आकर हमें उसकी जानकारी देते हैं। तो इसलिए ह्यूमन को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो बीइंग है वो है ये स्पिरिचुअल एनर्जी। तो सुबह से रात तक जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो किस रूप से सोचते हैं? ह्यूमन, और उसके आधार से जो हमारा डूइंग है, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी, संबंध, उसी के बारे में। तो हम ह्यूमन डूइंग्स हो गए हैं। इस बीइंग के बारे में अवेयरनेस है, रहती है, रहती है। 24 घंटे में से कितना समय रहती है प्रैक्टिकल अगर चेक करें तो क्या कहेंगे? बहुत कम, नहीं, कुछ समय पर आता है वो अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी अवेयरनेस सस्टेन करने के लिए इसके बारे में परमात्मा हमको बहुत स्पष्ट जानकारी देते हैं, ताकि फिर हम सारा दिन इसकी अवेयरनेस में रहकर मालिक होकर अपने जीवन को चला सके, अपने स्वास्थ्य को ठीक से रख सकें, अपने जीवन के इस स्वस्थ शरीर को भी, अपने हर कर्म इंद्रिय को भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सके और जीवन के मालिक रह सके। इसलिए यहाँ इसको राजयोग कहा, इस जीवन शैली को जो परमात्मा सिखाते हैं। तो राजयोग अर्थात ऐसा योग जो हमें राजा बना दे, मालिक बना दे। हर एक को राजा बनना अच्छा लगता है ना, बिकॉज मालिक है ना, डिसीशन मेकिंग पावर आपके हाथ में, कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में। अपने जीवन के भी हम राजा बन जाए, जैसे बचपन में ही हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें राजा बेटा कहते थे, तो मालिकपन का अनुभव। तो हम देखते हैं कि शरीर जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि एक व्हीकल है, आप इस व्हीकल को स्वस्थ रखने के लिए आपने इतना सुंदर पढ़ाई की है, इतना रिसर्च किया है, इतने वर्षों का अभ्यास है। अब ये ड्राइवर को भी सशक्त रखना है, जरूरी है ड्राइवर को सशक्त रखना, जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेवार कौन? ड्राइवर कह सकता है ना, गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को बैंक किया, मुझे कुछ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं। हम एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे? क्यों, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? दिखाई तो देती है दो गाड़ी आपस में बैंक हुए, व्हीकल्स नहीं एक्सीडेंट में, लेकिन हम क्यों रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को समझते हैं? क्यों? कंट्रोल किसके हाथ में था? उसके पास था। तो आत्मा के पास भी परमात्मा ने ये शक्तियां दी है। तो इस आत्मा का संपूर्ण परिचय, जो ड्राइवर है इस फिजिकल हमारी आइडेंटिटी का, उसका परिचय परमात्मा देते हैं कि वो कैसे, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, कौन सी उसकी फैकल्टीज है जिसके द्वारा वो सारे इस शरीर को और जीवन को कंट्रोल कर सकती है, चैनलाइज कर सकती है, गाइड कर सकती है, सुचारू रूप से चला सकती है। तो आत्मा मालिक, तो इसको ही हमने अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्दों से याद किया है। लेकिन एक चीज अगर हम देखें, सभी स्पिरिचुअल धर्मों में, फिलोसफीज में ये चीज कॉमन है, इस आत्मा का परिचय। गीता में भी लिखा है कि मस्तक के मध्य में, ब्रुकुटी में चमकता हुआ अजब सितारा, जो अजड़ है, अमर है, अविनाशी है। तो हम देखते हैं कि ये आप अच्छी तरह जानते हैं कहाँ आत्मा बैठी है, क्योंकि इसके बारे में आपके पास नॉलेज भी है। तो आत्मा मध्य में, नहीं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, डॉक्टर्स ही हमें बताते हैं कि कहाँ आत्मा बैठी हुई है। तो मैं आत्मा मस्तक के मध्य में बैठी हुई ये विशेष शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ। अगर ड्राइवर भूल जाए कि वो गाड़ी को चला रहा है तो क्या होगा, क्या होगा? हम उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे जहां ड्राइवर को थोड़ी आंख लग जाए या वो कोई और बातों में चला जाए? नहीं, सेफ नहीं है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक सेकंड भी ड्राइवर का ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हो लेकिन एक सेकंड के लिए आंख लग गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा मालिक यहां रुकटी के मध्य में विराजमान हूं, ये अवेयरनेस जागृत हो, ये यहां हम राजयोग से सीखते हैं। कैसे इस स्मृति में रहकर हम सारा दिन बहुत सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों को चला रही है। तो आज हम कई बार कहते हैं कि ये फिजिकल सेंस ऑर्गन्स सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं? जैसे आप भी गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि भाई आपको स्वस्थ रहना है तो ये डाइट होना चाहिए, ये थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो। नहीं गाइड करते, आप सभी डॉक्टर्स गाइड करते हैं, हमें भी गाइड करते हैं डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह से। तो हम देखते हैं कि ये भी गाइडेंस जो है वो फॉलो हो सके, वो लाइफस्टाइल ही स्वस्थ रह सके हर एक पेशेंट की और हमारी भी, एज अ डॉक्टर हमारी भी, क्योंकि आपका तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आपके द्वारा परमात्मा कितनों को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग देता है। तो आप तो भगवान के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। तो ये कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली कौन? आत्मा, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली। तो हम देखते हैं कि जब हम कर्म में आते हैं तो उस अवेयरनेस में रहने से आत्मा मालिक बनकर कराती है। जैसे कई बार आजकल हम कह भी देते हैं, कभी कभी थोड़ा मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल भी गया गुस्से में, फिर बाद में हम क्या कहते हैं, मुझे बोलना नहीं था लेकिन बस मुख से उस समय निकल गया गुस्से में, कहते हैं ना, कहते हैं ना, रिग्रेट भी करते, फील भी करते कि डोंट माइंड, मेरे शब्दों पर नहीं जाना, डोंट माइंड, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, नहीं मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव है, कहते हैं ना। हाँ, लेकिन आत्मा तो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मालिक है, तो इसलिए वो मालिक बनकर कैसे इस मुख से कार्य कराए, इन कानों से सुने, कर्म इंद्रियों से कार्य कराए, तो कैसे फिर से वो पावर ऑफ अथॉरिटी उसके पास आ जाए। क्योंकि हम कह तो देते हैं लेकिन वो शब्द से जो संबंधों में नुकसान हो जाता है उसको ठीक करने में तो बहुत समय लग जाता है, रिएक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद संबंधों को फिर से समरस प्यार वो संबंध में बना रहे उसके लिए समय लग जाता है। तो कैसे आत्मा फिर से मालिक बन जाए? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आत्मा के पास ये तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म फैकल्टीज हैं। आत्मा के पास मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं। तो जैसे शरीर के कर्म इंद्रियों के बारे में आप और बेहतर जानते हैं और हम फिजिकली देखते हैं, रोज मिरर में स्वरूप को देखते हैं, और इसलिए आप हर एक कर्म इंद्री के अभी तो स्पेशलिस्ट हो गए हैं, हर एक डॉक्टर्स, तो हर एक फिजिकल सेंस ऑर्गन को का क्या कार्य है, उसको कैसे स्वस्थ रखना है, क्या डिसफंक्शनिंग हो सकती है, इसके बारे में जानकारी है। आत्मा कैसे कार्य कराती है शरीर से? तो परमात्मा अगर ये हमें स्पिरिचुअल विजडम, ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा के पास ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया है। इन शब्दों के बारे में हम कई बार वर्णन करते हैं, आज मेरा मन नहीं था करने का, मेरा मन पता नहीं क्या हो गया, बहुत मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन इसमें नहीं लग रहा है, कहते हैं ना, कहते हैं, मन शब्द यूज करते हैं, हाँ या ना, यूज करते हैं, हाँ, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं कि इसको कैसे प्यार से दिशा दे सके। हमारा मन है ना, जैसे हमारा हाथ है तो जब चाहे इस हाथ को ऊपर करें, जब चाहे नीचे रखें, है ना? अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ही है कई बार कि भाई क्या करूं, मेरा हाथ ये हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक इलनेस है ना, क्योंकि नॉर्मली नेचुरली हमारा इस शरीर के कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। तो मन भी हमारी अगर बात नहीं मान रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपसेट हो जाता है, उसको सेट करने में बहुत समय लग जाता है, वो दुखी रहता है, तो ये भी मन की कहीं ना कहीं सूक्ष्म बीमारी है। तो कैसे इस मन को दिशा दें, वो परमात्मा सिखाता है। बुद्धि, ये शब्द भी हम यूज करते हैं, तो बुद्धि क्या है, और संस्कार स्वभाव, जो हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए संस्कार नहीं चेंज होंगे, स्वभाव तो रहेगा, कहते हैं ना कई बार, ये मेरी पर्सनालिटी है भाई, एक्सेप्ट कर लो मुझे, जैसा हूं वैसा हूं, कहते हैं कई बार, कहते हैं, लेकिन ये संस्कार भी हमारे ओरिजिनल कौन से हैं, और जो चीजें हमें दुख दे रही है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, परमात्मा आकर ये समझ लेते हैं। तो पहला, मन विचार करने की शक्ति, थॉट एनर्जी। सहज रूप में अगर मन को परमात्मा समझाते हैं कि विचार करने की शक्ति, इस समय भी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस समय आप क्या सोच रहे हैं, यू कैन बी ऑनेस्ट, क्या सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोग, जो कुछ अगर आपको कोई काम याद आया होगा, बैक होम कुछ मैसेज आया होगा, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, नहीं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में, अच्छा ये सेशन के बाद कौन सा सेशन है, फिर ब्रेक होगा या नहीं, भोजन में क्या होगा, वो भी सोच सकते हैं ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी, किसका चॉइस, आपका पक्का, जो थॉट मैं चाहूं मैं क्रिएट कर सकती हूं, किसका चॉइस है, थॉट्स आपका, ठीक है। मैं जो बोलना चाहूं वो मैं बोल सकती हूं, वो मेरा चॉइस, लेकिन आप यहां बैठकर क्या सोच रहे हैं वो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब परमात्मा हमें समझाते हैं कि मन के बहुत सारे प्रकार के विचार हैं। अगर हम देखें कोई इंडस्ट्री में, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, है ना, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स मशीनरी जो भी आती है, तो आप वही इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वही उसी कंपनी से लेते हैं जिसकी क्वालिटी 100% है, परफॉर्मेंस बहुत समय से देखा हुआ है। और आप सोचिए, मन भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आत्मा के अंदर मन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्री है, उसमें सुबह से रात तक क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, बहुत सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नो क्वालिटी चेक। अब क्या होगा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी कंपनी से लेना चाहेंगे जहां क्वालिटी चेक नहीं होता है, जहां क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं है, लेना चाहेंगे, रिस्क ले सकते हैं, नहीं, आप तो लाइफ एंड डेथ के साथ डील कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते। तो मन जो है, परमात्मा हमें समझाता है कि जब इसका क्वालिटी चेक करो, तो चार प्रकार के विचार हैं मन में, सकारात्मक नकारात्मक, ये दो चीजें हम जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन तीसरा विचार व्यर्थ, और चौथा साधारण रूटीन। अब हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं। आप प्रोग्राम के लिए आए हैं, आप में से कई कल पहुंचे, हाथ ऊपर करें जो कल पहुंचे, अच्छा, और कुछ आज सुबह भी पहुंचे, वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो यहां आने के पहले आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, या वहां ही आपको डिसीशन आपने लिया है आना है, आप में से कईयों को निमंत्रण, जरूर सबको ही निमंत्रण मिला है। तो यहां आने के पहले पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है इस कार्यक्रम के प्रति, क्या पॉजिटिव थॉट हो सकता है, आई होप यू हैड सम पॉजिटिव थॉट्स, यस, बहुत अच्छा होगा, और जी लाइफ चेंजिंग होगा, वंडरफुल, और आत्मनिरीक्षण होगा, और स्पिरिचुअल कुछ सीखेंगे, अच्छा। नेगेटिव क्या हो सकता था, रियलिस्टिक बनिएगा, वो भी आया होगा श्योरली, बताइए बताइए. यस जी. पीछे हॉस्पिटल का क्या होगा? मैंने डिसीजन ले तो लिया है बट आई श्योर आई मे रिग्रेट इट. वहां सब इतना टाइम 3 दिन और वहां कारोबार सब इतना अपसेट होगा. बहुत डिफिकल्ट. पता नहीं मैं कुछ समझ सकूंगा नहीं. विल इट रियली बी वर्थ वाइल? यस आया होगा. और भी आ सकते हैं, और भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं. वेस्ट थॉट क्या हो सकता है? व्यर्थ. नेगेटिव और वेस्ट में अंतर क्या है? नेगेटिव माना कोई नेगेटिविटी है, माना गुस्से में या कोई भी हमारी नेगेटिव टेंडेंसी काम कर रही है. वेस्ट इज मोर लाइक एन अनप्रोडक्टिव थॉट. जो विचार से कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है, उसको सोचने से कोई मदद नहीं मिलेगी. टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पास्ट के बारे में, भविष्य के बारे में. अब यहां बैठकर अगर आप अपने क्लिनिक की और कारोबार की चिंता कर रहे हैं तो वेस्ट. तो यहां आने के पहले भी पहुंच तो रहा हूं, जा तो रहा हूं, पता नहीं मेडिटेशन कर पाऊंगा या नहीं, उठ पाऊंगा या नहीं. मॉर्निंग बोल रहे हैं कि वहां भी अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन भी होगा, कर सकूंगा या नहीं. नहीं, ये जो थॉट्स हैं वो वेस्ट हैं. और ऑर्डिनरी थॉट आने के पहले क्या होगा? अगर आप ट्रेन में आए हैं, ट्रेन में थोड़ा ऊपर नीचे भी कहां कहां हुआ है, तो फिर कितने बजे पहुंचेंगे? अच्छा, हमें बताया गया कि आबू रोड पे कोई लेंगे हमें. अच्छा, फिर वहां से हमें ऊपर जाना है. ठीक है, फ्लाइट से आए हैं तो चलो उदयपुर से आए तो हमें फिर ये व्हीकल से आना है. जो भी लॉजिस्टिक्स, जो भी कारोबार से संबंधित दैनिक हमारी कारोबार के विचार, वो है रूटीन, वो है हमारे ऑर्डिनरी. तो हम देखते हैं कि यहां राजयोग से हम अपने नेगेटिव वेस्ट को पॉजिटिव में चेंज करते हैं. जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि अभी साइंस हमें बताता है कि एवरी थॉट हैज एन इम्पैक्ट. नहीं, डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट है, कितने सारे साइंस के ही एक्सपेरिमेंट्स है कि एवरी थॉट इमोशन इज क्रिएटिंग एनर्जी. इसके बारे में और भी आपको सेशंस में क्लैरिटी होगी. तो फिर हम देख रहे हैं कि वो एनर्जी तो क्रिएट हो रही है, हमारे शरीर को भी, हमारे वातावरण को भी हम इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो कैसे हम जानते हैं कि ये नेगेटिव चेंज होना चाहिए, ये चिंता, ये वेस्ट जो है निकालना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए. चाहते हैं लेकिन कई बार हम देखते हैं मन हमारी बात मानता नहीं है. कहते भी है ना मन को, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो. कहते कहते हैं लेकिन फिर भी मानता है आपकी बात. कभी कभी मान लेता है कुछ समय के बाद, लेकिन कभी कभी नहीं मानता है. तो कैसे हम ये मन के विचारों को परिवर्तन कर सके, वो यहां परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा सिखाता है कि कैसे सारा दिन हम अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं. जैसे एक बाल्टी है, उसमें गंदा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन आपको मैंने कहा कि ये बाल्टी को आप हाथ नहीं लगाएं, लेकिन इसमें अच्छा पानी फिर से भर दें, क्लीन वाटर भर दें. क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी? अच्छा अच्छा पानी, अच्छा सेटल होने देंगे, फिर भी मिट्टी तो अंदर रहेगी ना, पूरा क्लीन करना है. अच्छा पानी डालेंगे, नल खोल देंगे, पानी अंदर आता जाएगा, और कुछ समय के बाद क्या होगा, सारा गंदा पानी बाहर, और वो अच्छे पानी से भर जाएगा. ऐसे राज्यों के द्वारा परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सारा दिन अपने बारे में, कारोबार के बारे में, संबंधों में अच्छे विचार, शक्तिशाली विचार कैसे हम सारा दिन रख सके. और फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव और वेस्ट हमारा समाप्त होता जाता है. तो पॉजिटिव थिंकिंग किससे होती है? हमारे वर्च्यूज के आधार से जब हम चिंतन करते हैं तो अच्छा सोचते हैं. जब हम अपने वीकनेसेस के आधार से सोचते हैं तब नेगेटिव थॉट्स होता है. और जैसे हमने देखा, वेस्ट पीछे का हो गया, उसके बारे में सोचना, जो होगा उसकी चिंता करना, और कारोबार. अब हमें बुद्धि को के द्वारा गाइड करता है परमात्मा, समझ देता है कैसे वो नेगेटिव वेस्ट को फिर से पॉजिटिव में बदले. जैसे आजकल रिसाइकलिंग करते हैं वेस्ट को, कोई फिर से रिसाइकलिंग करके उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट बना देते हैं. ऐसे मन के ये नेगेटिव वेस्ट को आइडेंटिफाई करें, पहले तो परखें, समझें, क्योंकि कई बार वेस्ट को भी क्या कर लिया हमने, ऑर्डिनरी मान लिया, इतना तो सोच चलता ही है, इतना चिंता तो होगी, चाइल्ड है तो चिंता होगी, जिम्मेवारी है चिंता होगी, लेकिन समझते हैं कि चिंता ही क्या कर रही है, क्या कर रही है, बीमारियों का भी आह्वान कर रही है। तो वो परिवर्तन शक्ति धीरे धीरे हम देखते हैं मन को प्राप्त होती जाती है। अब बुद्धि जो है मन के विचारों पर निर्णय लेने वाली बुद्धि, कई बार हम कहते हैं आज मेरे दो मन है, ये करूं ना करूं, होता है ऐसे, होता है, होता है। हाँ, तो निर्णय लेने वाली कौन, दो मन तो नहीं है, क्योंकि एक मन को मैनेज करना चैलेंजिंग है, दो मन तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। दो मन नहीं है, परमात्मा हमें सिखाते हैं मन में अनेक विचार चलते हैं, वो विचारों पर निर्णय लेने वाली है बुद्धि। तो बुद्धि का काम क्या है, वो पहले जो भी उसके सामने परिस्थिति है उसके बारे में सोचती है, रीजनिंग करती है, विजुलाइज करती है, ये करने से उसके पास ऑप्शंस हैं तो विजुलाइज करती है, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, रीजनिंग एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, फिर अपनी समझ के आधार से, जितना बुद्धि में समझ है उसके आधार से निर्णय लेती है। और जो फिर निर्णय हम लेते हैं वो नेचुरल कर्म बन जाता है। तो इसलिए कहावत में भी कहते हैं सोच समझ कर निर्णय लेना है, सोच समझ के कर्म करना है। सोचना तो मन करता है, समझने का काम कौन करता है, बुद्धि। अब इस समय क्या चैलेंज है बुद्धि में, जैसे मन को हमने देखा कि आदत हो गई है ज्यादा व्यर्थ और नेगेटिव सोचने की, बुद्धि के यहां थोड़ा लिमिटेशन क्या आ गया है कि बुद्धि बहुत कम इंटरवीन करती है। हम देखते हैं कि आजकल कई चीजों में ऑटोमेटिक हो गया है, जैसे अगर गुस्सा आ गया कोई बात के लिए, मन में जो आया वो हम बोल देंगे, कर लेंगे। तो क्रोध आ गया, मन ने कोई निर्माण किया विचार, क्रोध के प्रभाव में आपने वो बोल दिया, तो बुद्धि का समय आया इंटरवीन करने का, बुद्धि को चांस मिला, मिला नहीं। तो धीरे धीरे बुद्धि बहुत कम इंटरवीन कर रही है। और दूसरा, बुद्धि कई बार परवश हो जाती है, प्रभाव में आ जाती है, हमारी कोई भी नेगेटिव पर्सनालिटी के प्रभाव में आ जाती है। हम रोज सोशल मीडिया में इसको देख रहे हैं, अपने जीवन में भी देख रहे हैं। तो वही समय जब हमें गुस्सा आता है उस समय हम देखते हैं कि कई बार हमारी अंतर की आवाज, हमारा इनर कॉन्शियंस हमें कहता भी है, कहता है क्या, कहता है गुस्सा करने के लिए कहता है, गुस्सा नहीं करने के लिए कहता है, क्या कहता है, नहीं करो, नहीं कहता भी है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उस समय वो बात को हमने इतना अपने अंदर महत्व दे दिया है, इतना अपसेट है, जो क्रोध की फीलिंग है वो इतनी स्ट्रांग है, अपसेट होने की फीलिंग स्ट्रांग है, वो हमारे बुद्धि को अपने प्रभाव में ले आती है, वश कर लेती है। फिर बाद में जब हमें रियलाइज होता है तो हम क्या कहते हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो उस समय बुद्धि क्या है, उस समय बुद्धि परवश नहीं है, उस समय बुद्धि के पास फिर से समझ है, रियलाइजेशन है। तो जो बुद्धि उस समय रियलाइज कर सकी, अगर वो पहले रियलाइज करे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कर्म करने से बच जाएंगे। तो यहां हमें परमात्मा रोज आध्यात्मिक ज्ञान की समझ देता है, हमारी रोज की स्पिरिचुअल स्टडी है, क्योंकि ये बातें हम भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। तो हमें रोज परमात्मा सिखाता है, रोज ये स्पिरिचुअल स्टडी जो है हमारी मॉर्निंग की होती है, जिसमें हमें परमात्मा स्पिरिचुअल विजडम बुद्धि को देता है, जिससे बुद्धि में और क्लैरिटी होती जाती है और वो बुद्धि उस समझ के आधार से सारा दिन काम करती है, बुद्धि में शक्ति आ जाती। और जो हम कहते हैं कि राजयोग के अभ्यास से हम अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, कहा भी जाता है जब हमारी बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ है तो वो हायर विजडम हमें गाइड करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। आपने भी ये बहुत बार अनुभव किया है, जिसको हम अपनी भाषा में, दुनिया में, लौकिक भाषा में इंट्यूशन कहते हैं, कहते हैं ना, आपको महसूस हुआ है इंट्यूशन अंतर प्रेरणा. आपके कोई पेशेंट बहुत डिफिकल्ट है, उसका कोई इमरजेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, उस समय आप कुछ अलग करते हैं जिससे वो बच जाता है. होता है ऐसा? होता है. उस समय आपको गाइडेंस मिल जाता है. कहां से? कहां से गाइडेंस मिल जाता है? इंट्यूटिवली. ये इंट्यूशन को ही आध्यात्मिक रूप में हम स्पिरिचुअल टचिंग कहते हैं. डायरेक्ट जो हम देखते हैं इसका जो अर्थ है डिक्शनरी में, अर्थ इंट्यूशन का एक अर्थ ये भी है, डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रूथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स. तो उस समय ये टचिंग मिल जाती है परमात्मा के साथ. हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलरली, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करते हैं. वो परमात्मा को सुप्रीम सर्जन को साथी बना देते हैं हर पेशेंट के लिए, हर टास्क में, और उन्हें बहुत सारे अनुभव ऐसे सुंदर होते हैं. अब संस्कार, जो निर्णय आपने लिया कर्म के लिए, वो कर्म बार बार होता है. वो जो कर्म रिपीट होता जाता है तो उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है. वो बन जाता है ना, बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है. जैसे कई चीजें आपके लिए एक्सपीरियंस से नेचुरल हो गई है अपने कारोबार में, अनुभव में. अब नया ट्रेनी कोई आपके पढ़ाई के बाद आता है तो उसको वो चीजें सीखना पड़ता है आपके गाइडेंस में. ऐसे ही हमारे कई कर्म के वजह से एक बिहेवियरल पैटर्न क्रिएट हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे संस्कार बनते जाते हैं. अब ये संस्कार जो है, ये शब्द एक्यूरेट है क्योंकि इसमें सभी चीजें आ जाती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फीलिंग्स, स्मृतियां, मेमोरीज, सब कुछ इसमें आ जाता है. परमात्मा हमें समझाते हैं कि पांच रूप से ये संस्कारों का ओरिजिन है, पांच प्रकार के संस्कार है. कुछ संस्कार है जो हमने पास्ट लाइफ जर्नी से लेकर आए. अगर आप घर में देखते हैं, बच्चे हैं तो, दो बच्चे भी हैं, आपके भी सिबलिंग्स हैं, तो पेरेंट्स से पालना तो वही मिलती है, लेकिन संस्कार अलग होते हैं. होते हैं. कोई बच्चे आप देखिए, आजकल चाइल्ड प्रोडिजीज के बहुत सारे हम प्रोग्राम्स भी देखते हैं, टीवी पर भी सीरियल्स देखते हैं. छोटे छोटे बच्चे वो बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं. नहीं, बहुत बार हम पढ़ते हैं तो वो आत्मा अपने पास जर्नी ऑफ लाइफ से उस कला को संस्कार के रूप में ले आई है. कुछ संस्कार परिवार से मिलते हैं हमें. जो परिवार है हमारा, जो हमारे माता पिता है, वो हमें संस्कार देते हैं. कुछ संस्कार हमें संघ से मिलते हैं. कहा भी जाता है, जैसा संग वैसा रंग, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो जिनके साथ हमारी रोज बातचीत हो रही है, और वो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा सोशल सर्कल, वो जैसा सोचते हैं, वो जैसी बातचीत करते हैं, वो जैसी इनपुट्स की लेन देन करते हैं, वैसे भी हमारी सोच बदलती जाती है. और फिर हम देखते हैं समाज से भी हमें संस्कार मिलते हैं. प्रोफेशनल भी हम संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं, जो प्रोफेशन के हैं, एक्सपीरियंस के हैं. हम अपने अंदर वो गुण, वो शक्तियां, वो पर्सनालिटी बनाते जाते हैं. और कुछ संस्कार जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे संस्कारों का स्रोत है, फोल्डर है, ये है परमात्मा से जो प्राप्त किया हुआ संस्कार, गुण, शक्तियां, ओरिजिनल, जो हमारा इनेट नेचर है, जो हमें ईश्वर से मिला है, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम पेरेंट है, स्पिरिचुअल पेरेंट है. तो जैसे हमारे फिजिकल पेरेंट से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, संस्कार पालना मिलती है, परमात्मा से ये नेचुरल संस्कार हमें मिले हैं. वो कौन से हैं? कौन से हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. तो शांति हम सबको प्रिय है, सबको प्रिय है. जो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है उसको भी शांति प्रिय है. और हम देखते हैं कि ये गुण हमें इतना आकर्षित करता है कि बार बार हम कहते भी हैं रिलैक्स. हम कहते हैं मुझे शांत रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे कूल रहना, आजकल के शब्दों में कूल जो बार बार कहते हैं. तो क्यों? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शांति है. हम सारे दिन में कितना समय, अगर हो भी जाते हैं अपसेट, गुस्सा आ भी जाता है, तो कितना समय गुस्सा कर सकते हैं? एज अ डॉक्टर हम समझते हैं हमारे शरीर को भी अस्वस्थता होती है, लेकिन कितना समय कर सकते हैं मैक्सिमम? कितना समय जी? कुछ मिनट उस मनोस्थिति में ज्यादा समय रह सकते हैं, लेकिन वर्णन जो है कुछ मिनट। शांत कितना समय रह सकते हैं? रिलैक्स्ड हम प्रकृति के साथ, अपने फैमिली के साथ कितना एंजॉय करते हैं, बहुत समय तक रह सकते हैं। ओरिजिनल नेचर है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। प्योरिटी हमें आकर्षित करती है, ऑर्डरलीनेस जो है। हम जब आप अपने क्लिनिक में जाते हैं, वहां सब सफाई की हुई है, सब कुछ ऑर्डर में रखा हुआ है आपके टीम ने, आपके स्टाफ ने, अच्छा लगता है ना फिर आपका कार्य बिगिन करना। लेकिन सब डिसऑर्डर में है, गंदगी है, तो फिर नेचुरली वैसे भी हाइजीन के हिसाब से आप कार्य नहीं कर सकते। तो ये बहुत हमें आकर्षित करता है, स्वच्छता जो पवित्रता से समीप है, प्योरिटी। इसलिए छोटे बच्चे हम सबको आकर्षित करते हैं, उनकी प्योरिटी। आध्यात्मिक स्थान हमें आकर्षित करता है क्योंकि शांति पवित्रता है। फिर ज्ञान, नॉलेज। एज अ डॉक्टर भी आप रोज अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, है ना? रोज आपको नया कुछ पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, इंटरेक्ट करना है, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, वहां बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, व्यूज एक्सचेंज करते, एक्सपीरियंस। तो आत्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, लेकिन आज हम देखते हैं वो अक्वायर्ड सेल्फ के बारे में जानते हैं, आत्मा अपने इनेट सेल्फ के बारे में नॉलेज नहीं जान रही है, उस वहां अपडेट नहीं कर रही है। यहां रोज परमात्मा हमें अपडेट करता है, जानकारी देता है, ज्ञान की समझ देता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूं। हमारे कोई भी संबंध में अगर सम्मान, स्नेह, केयर, कंसर्न कम है तो क्या होगा? स्पेशली जो रोज के संबंध है, वहां अगर स्नेह की कमी, रिस्पेक्ट की कमी फील कर रहे हैं, परिवार में, जीवन साथी, भाई बहन, बच्चे, अपने इमीडिएट, जहां आप क्लिनिक में, इमीडिएट आप जहां डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में वर्क करें, जो इमीडिएट आपके कलीग्स हैं, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं? नहीं। आपको उन संबंधों में स्नेह चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। स्नेह माना अंतर से सम्मान स्वीकार करना, क्योंकि आत्मा का ये निज ओरिजिनल नेचर है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, इनर पावर, विल पावर, और हमें हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है जिन्होंने परिस्थितियों में सशक्त रहे, पॉजिटिव रहे, स्टेबल रहे, हिम्मत वाले रहे। मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप, खुशी जो है वो हमें बहुत आनंदित करती है, खींचती है, नहीं? क्योंकि आप देखिए, आज आप भी डॉक्टर्स के रूप में अपने पेशेंट को कहते हैं कि खुश रहो, स्ट्रेस नहीं रखो, नहीं कहते ना, बी हैप्पी, डोंट टेक स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस तो हेल्थ को ले आता है, नहीं? हैप्पीनेस जो है ये नेचुरल है। जैसे हम कोई भी, हम में से कोई भी यहां बैठा अगर थोड़ा भी दुखी हो जाता है तो हमारा पुरुषार्थ किसके प्रति होता है? वी स्टार्ट वर्किंग ऑन bringing our state of mind back to that happy feeling, है ना? फिर उसके लिए हम विधि जो यूज करते हैं वो अलग अलग है। अब मोस्टली कौन सी विधि यूज करते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा अपसेट है तो क्या करता है, दुखी है, क्या करता है? जी, प्रकृति में कहा जाता है, फ्रेंड्स के साथ बात करता है, नहीं? और क्या करते हैं? ये सब चीजें टेम्पररी है, और भी कई साधन है जो आप जानते हैं नुकसानकारक भी है, एडिक्शंस हैं, तो ये सब चीजें टेम्पररी है। लेकिन नेचुरल हैप्पीनेस वो हम यहां सीखते हैं कि वो हमारा नेचर है, नेचुरली आत्मा अंदर से लाइट रहे, हैप्पी रहे, और ब्लिस ये हमारा ओरिजिनल संस्कार। जब ये छह गुण अंदर में हम नेचुरली स्वभाव के रूप में अनुभव करते हैं तो आत्मा आनंद की स्थिति में पहुंचती है। ये हमारा ओरिजिनल नेचर, और जब आत्मा ये गुणों को सारा दिन इस अनुभव में रहती है, इसको यूज करती है रिलेशनशिप्स के लेन देन में, कारोबार में, क्योंकि सोल कॉन्शियस है माना ये गुणों की स्मृति, बीइंग अवेयर ऑफ दिस इनर सेल्फ माना आत्मा ये गुणों की अवेयरनेस में रहती है, तो क्या होता है? आप ही जानते हैं कि स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन को भी आत्मा के ये गुण जो है एनर्जाइज करते हैं, नहीं? तो ये एनर्जी देते हैं, एम्पावर करते हैं। तो टोटल में अगर हम देखें तो आत्मा ही शरीर को चला रही, ऐसा है ना, आत्मा शरीर को चला रही। इसलिए आत्मा को सशक्त रखना और आत्मा को अपने ओरिजिनल नेचर में कनेक्टेड रखना, नेचुरल वो नेचर बनता जाए, वो नेचर जो है, वो स्वभाव जो है, हमारे कर्मों में, हमारे लेन देन में, कारोबार में व्यक्त हो सके। तो उस अनुभव में बहुत सारे हम देखते हैं अनुभव, यहाँ आप सुनेंगे भी, आसपास आपके जो डॉक्टर्स आपकी संभाल कर रहे हैं सेवा में, बहुत सारे सुंदर हम रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा हम देखते हैं स्वभाव जो हमारे इन गुणों के समीप आता जाता है तो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक होता जाता है, बेटर होता जाता है, हीलिंग जो बॉडी की शक्ति है वो भी बेटर हो जाती। तो ये गुण जिसको हम खोज रहे हैं, ये परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये आपका स्वरूप है, आपका नेचुरल स्वरूप है। तो आज तक हम हमेशा कहते आए कि आई शुड बी पीसफुल, कहते थे ना, मुझे शांत रहना चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, या मुझे मन को शांत रखना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए, मुझे शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, कहते थे ये मन को कहते थे कई बार। हाँ, अब यहां परमात्मा ने हमारे मन को बहुत सुंदर वोकैबुलरी दे दी। कौन सी वोकैबुलरी? मैं शांत स्वरूप हूं। अब बार बार कहना कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, और ये संकल्प निर्माण करना, आई एम अ पीसफुल सोल, कौन सा सहज लगता है? आई एम अ पीसफुल सोल। अच्छा भी कौन सा लगता है? आई एम अ पीसफुल सोल। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं या कह रही हूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट मीन्स मेरी अवेयरनेस अपने लिए क्या है, मैं हूं कौन, गुस्से वाला हूं, गुस्से वाली हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। आजकल थोड़ा रियलिस्टिक बनते हैं तो कहते हैं भाई कम करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये हमारी वोकैबुलरी होती जाएगी कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं ओरिजिनली शांति मेरा स्वभाव है, नेचर है। और यहां हम बहुत सुंदर रूप से, आप सुनते भी होंगे हमारे इस कॉम्प्लेक्स में, बीच बीच में एक एक घंटे में एक मिनट के लिए एक बहुत सुंदर म्यूजिक गीत बजता है, उस समय हम फिर से अपने आप को इन गुणों की अवेयरनेस में रीसेट करते हैं। क्योंकि यहां तो सुना, फिर कारोबार में वापस जब आप जाएंगे तो क्या होगा, ये बातें याद रहेगी, भूल जाएंगे ना, हम भी भूल जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर विधि बताई है जिसको हम यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। तो सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को याद कराना, उस अवेयरनेस में रहना। उसका बहुत सुंदर ऐप भी है, अगर आप वो भी यूज करें, या तो आप पेशेंट्स को देखते हैं तो हर पेशेंट के बाद एक मिनट या कुछ सेकंड्स का जो ब्रेक मिलता है, उस समय अपने आप को याद कराने से। अब जैसे जैसे हम ये याद कराते जाते हैं तो क्या होगा, कहा जाता है द साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कहता है कि जैसे आपकी स्मृति वैसी आपकी मन की स्थिति बन जाती है, जैसी आपकी मन की स्थिति वैसी आपकी वृत्ति बन जाती है, और जैसी आपकी वृत्ति वैसी आपकी दृष्टि बनती जाती है, जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी कृति बनती जाती है, और जैसे हमारी कृति माना कर्म, वैसे हमारी अनुभूति, हमारी सृष्टि, और वैसी हमारी स्मृति हो जाती है। तो हिंदी में बहुत सुंदर है जो एक्चुअल अर्थ है कि भाई जैसे हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, सो इज माय स्टेट ऑफ माइंड, एज इज माय स्टेट ऑफ माइंड सो बिकम्स माय एटीट्यूड, एज इज माय एटीट्यूड सो इज माय विजन, एज इज माय विजन सो इज माय पर्सपेक्टिव, सो इज माय चॉइस, माय डिसीजन, माय कर्मा, एंड एज इज माय कर्मा सो इज माय एक्सपीरियंस। तो सीड का क्या होगा, बेस लेवल, अगर मुझे अपने कर्मों को, अपने इंटरेक्शंस को चेंज करना है, मुझे वहां वैल्यू एडिशन लाना है, तो बेस लेवल कहां काम करना होगा, अवेयरनेस पर। तो यहां राजयोग से परमात्मा हमारी अवेयरनेस में ये गुणों को अनुभव कराता है। तो अवेयरनेस जो है वो सोल कॉन्शियसनेस की बनती जाती है, और जैसे हम सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, उस अवेयरनेस में रहकर कार्य करते हैं, तो हमें बहुत अंदर से खुशी मिलती है, शक्ति, बिकॉज वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ, ओरिजिनल नेचर। अब क्या है, जब हम इस शरीर की स्मृति में रहते हैं तो कारोबार तो करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वीकनेसेस हमारी है, थोड़ी थोड़ी थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा ईगो है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी कभी कभी आ जाती है, आ जाती है, कभी कभी आती है। जब हम कई बार कहाँ जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो हम देखते हैं कि कई लोग हमसे शायद पीछे आए हुए हैं, शायद वो आज बहुत सुंदर आगे बढ़ रहे हैं, उनको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। हमारे हॉस्पिटल में या कोई और कोई कॉन्फ्रेंस में किसी और को हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है, तो इनसिक्योरिटी आती है, आती है। तो ये इनसिक्योरिटी है, थोड़ा एंजाइटी, फियर, ये जो चीजें हैं ये हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब इस बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि अपने सेल्फ को रियलाइज करना, माना इस ट्रू अवेयरनेस को अनुभव करना, उसको एंजॉय करना, तो जैसे आत्मा फिर से अपने इस गुणों की स्मृति में आ जाती है, तो वो हर सिचुएशन को सॉल्व करना शुरू करती है, एंजॉय करना शुरू करती है। इसलिए स्वास्थ्य अर्थात स्व स्थिति में स्थित रहना, अपने आप को एंजॉय उस फीलिंग में अनुभव करना। अब जब आप पीसफुल हैं, हैप्पी हैं, तो फिर जब आप क्लिनिक में हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो क्या होगा, आपके इंटरेक्शंस और आप जैसे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, आप सर्जरी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लोग आपके साथ काम करना कंफर्टेबल फील करेंगे, करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बड़े बड़े सर्जन, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, जो इस मेडिटेशन के अभ्यास से फिर धीरे धीरे बहुत इसी रूप से शांत, लविंग, इजी बनते गए, और शुरू शुरू में उनका टीम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया वो आकर उनको कहने भी लगा कि भाई आप ठीक तो है ना डॉक्टर क्योंकि उनको इतना समय से उन्होंने उसी रूप से देखा है। लेकिन फिर वही टीम जो आपका है क्लिनिक में है, डॉक्टर जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपके साथ काम करने में उनको खुशी होगी, तो कार्य बहुत सहज होगा। पेशेंट्स जो हैं आप ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे, नहीं वो भले आप 2-3 मिनट ही मिलते होंगे, लेकिन क्योंकि आप शांति से प्यार से उनसे बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उनकी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी, उनको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा। तो ये अवेयरनेस में रहकर आप परमात्मा के एंजल के रूप में कार्य करेंगे, फरिश्ते के रूप में। चलिए थोड़े समय के लिए इसका अनुभव करें मेडिटेशन में, कि कैसे हम अपने आप को इस अवेयरनेस में रहकर कारोबार कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए जैसे हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए विचार देते जाएंगे। जैसे जैसे आप ये मेडिटेशन सीखेंगे, आप रेगुलर करेंगे, फिर आप अपने आप ये विचारों का निर्माण कर सकेंगे। मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हमने देखा कि बाह्य स्व को थोड़े समय के लिए उसको हम साइड में रखते हुए अपने इस आंतरिक स्व की अवेयरनेस में रहते हैं, क्योंकि योग करने वाली आत्मा है, परमात्मा जो सोर्स ऑफ वर्चूज और क्वालिटीज है उसके साथ कनेक्ट करने वाली आत्मा है। कुछ समय के लिए अपने आप को इस बाहर के वातावरण से डिस्कनेक्ट कर लें। यहां शांति में हम सब बैठे हैं, वातावरण भी शांत है। मन की आंखों से कुछ समय के लिए उस आंतरिक स्व को देखें। आज हम सुन रहे थे कि ये हमारा शरीर जो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है, इसको दिशा देने वाली मस्तक के मध्य में मैं एक सुंदर आत्मा हूं। मन की आंखों से एक सुंदर लाइट को विजुलाइज करें, जहां मस्तक के मध्य में हम तिलक लगाते हैं, वहां इस सुंदर सितारे को देखें। आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, अ बीइंग ऑफ पीस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें इस सुंदर आत्मा से, शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। ये शांति की लाइट मस्तक से लेकर सारे शरीर में भी प्रवाहित हो रही है। शरीर भी बहुत लाइट रिलैक्स हो जाता है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, स्नेह स्वरूप हूं। ईश्वर पिता ने मुझे बहुत सारी गुण और शक्तियां दी है। मन की आंखों से फिर से अपने परिवार को देखें। आपकी डेली रूटीन में सुबह से आप परिवार से इंटरेक्ट करते हैं, अब जब मन की आंखों से देख रहे हैं तो परिवार के सदस्यों को भी, उनके आंतरिक स्वरूप को देख रहे हैं। मस्तक के मध्य में वो दिव्य सितारा, वो भी शांत स्वरूप आत्मा है, स्नेह स्वरूप है। और इस अवेयरनेस से आपकी बहुत अच्छी लेन देन, खुशी की लेन देन है। अब आप अपने कारोबार में चले जाएं, अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, वहां भी आप अपने टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, वो आपका परिवार, वहां भी आप हर एक के मस्तक के मध्य में उस सुंदर आत्मा को देख रहे हैं, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा, जिसमें कई गुण और शक्तियां हैं। आप उनके साथ भी शांति से, प्यार से कारोबार कर रहे हैं। महसूस करते हैं कि परमात्मा की भी ब्लेसिंग्स, परमात्मा का प्यार एक सर्किल ऑफ गोल्डन लाइट के रूप में आपके साथ है। सारा दिन कारोबार कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन आप बहुत लाइट हैं। सारा दिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं, लोग दिल से आपको दुआएं दे रहे हैं। उन ब्लेसिंग्स को आप अंदर में महसूस कर रहे हैं। परमात्मा की भी शक्तियां, असीम प्यार आपके साथ है। अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए हम फिर से अपने आप को यहां इस संगठन में देख रहे हैं। फिर से हम अपने आप को यहां इस हॉल में देख रहे हैं।